अभिमन्यु ने ये देखकर अपने मन में कहा, बड़ी अजीब बात है, हम तो सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर आई हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगी, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अभिमन्यु को इस बात की बड़ी हैरानी हुई। वे दोनों वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। 3 घंटे बीत गए और तभी मासा ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता जाइए सबके साथ बैठकर लंच कर लीजिए। अर्पिता ने जैसे ही मासा की ये बात सुनी उसने कहा, और मासा आप? मासा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम अपना खाना अपने रूम में खाएंगे। इतना बोलकर मासा सीधे अपने रूम में जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों मासा, आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी क्या? मासा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अभिमन्यु ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन क्यों मासा, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? मासा ने अभिमन्यु के इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु ने उनका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही मासा उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अभिमन्यु यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, प्लीज आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। अभिमन्यु ने मासा के बिल्कुल पास आकर उनके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मासा हम कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रहे, हम आपके साथ ही लंच करेंगे, आइए हमारे साथ और यहाँ बैठिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने मासा का हाथ पकड़ा और उन्हें वो अपने साथ लाकर वहीं डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाने लगा। तभी मासा ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, नहीं, अब आप इस महल के राजा हैं और आप इस कुर्सी के हकदार हैं, हम नहीं। मासा ने ये बात कही और वो साइड वाली कुर्सी पर बैठने जा रही थी कि अभिमन्यु ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं मासा, भले ही हम इस महल के राजा बन चुके हैं लेकिन हमारे लिए अभी भी सबसे बड़ा दर्जा आपका ही है, इस कुर्सी पर आप ही बैठती थीं और हमेशा आप ही बैठेंगी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने मासा को इस कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठा। इप्सिता अभिमन्यु के जस्ट बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। अभिमन्यु मासा की तरफ देखकर मुस्कुराया और मासा ने उसकी और इप्सिता की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप वहीं बैठकर खाना खाने लगी। वहीं डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे कि तभी मासा का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन की तरफ देखा तो इप्सिता की मम्मी का फ़ोन आ रहा था। उन्होंने तुरंत वो फ़ोन उठाया और वो उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन साइड में रखते हुए कहा, इप्सिता की मम्मी का फ़ोन था, उन्होंने कल इप्सिता को पग फेरे के लिए बुलवाया है। अर्पिता, अभिमन्यु और इप्सिता के पग फेरे की सारी रस्में आपको देखनी है और हो सके तो उन दोनों के साथ आप भी वहां चली जाइएगा। मासा की ये बात सुनकर अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखने लगा। सबने एक साथ बैठकर लंच किया और थोड़ी ही देर में अर्पिता ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी सा आप थक गई होंगी ना, चलिए हम आपको आपके रूम में छोड़ाते हैं। अर्पिता इप्सिता को उसके रूम में लेकर जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु की बुआ ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी थोड़ी देर को हमें नई बहुरानी से बात करने दो, तुम तो तुरंत ही अपनी भाभी सा को कमरे में लेकर जा रही हो, थोड़ा हम भी तो उनसे बात करें। अभिमन्यु ने अपनी बुआ सा की ये बात सुनी और वो अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता ने इप्सिता को वहीं पर बैठा दिया। अभिमन्यु वहीं बैठा हुआ था कि तभी बुआ सा ने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है राजा साहब, आप तो अपनी रानी सा को छोड़कर कहीं जैसे जाना ही नहीं चाहते हैं, हम तो सोच रहे थे कि आपकी रानी सा से हम अकेले में कुछ बात करेंगे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, अकेले में क्यों बुआ सा, हमारे सामने बात करने में कोई परेशानी है क्या? अभिमन्यु की ये बात सुनकर पल्लम ही उसे घूरते हुए देखने लगी और तभी समर्थ ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही अर्पिता की नज़र समर्थ पर गई और उसने देखा कि वो अभिमन्यु को बात करने के लिए बुला रहा था, अर्पिता ने अभिमन्यु के पास आकर कहा, भाई सा यहीं भाभी साहब के पास रुकिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अर्पिता तुरंत समर्थ की तरफ गई। उसने समर्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज समर्थ। समर्थ ने अर्पिता को इस तरह अपना हाथ पकड़ते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आप हमें इस तरह से यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप भाई सा से क्या बात करने जा रहे हैं अभी? समर्थ ने जैसे ही अर्पिता के चेहरे पर टेंशन देखी उसने अर्पिता की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हमने तो आपसे कल रात में ही कहा था ना कि हम सुबह ही अभिमन्यु से बात करेंगे, तो हम उनसे हमारे बारे में बात करने जा रहे हैं, और वैसे भी सबसे पहले हम अभिमन्यु को ही तो बताएंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अर्पिता ने समर्थ का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, अभी आपको भाई सा से बात नहीं करनी चाहिए। समर्थ ने जैसे ही अर्पिता की ये बात सुनी उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्यों, अगर अभी हम उससे बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखा और तभी उसे ऐसा लगा कि वहाँ कोई आ रहा है। उसने समर्थ का हाथ पकड़ा और उसे किचन की तरफ लेकर गई। वहाँ इस टाइम कोई भी नहीं था। उसने समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, समर्थ हम जानते हैं कि आप भाईसा को ये बात बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी कल ही भाईसा की रिसेप्शन थी और उसके बाद आज मुँह दिखाई हुई है, अगर आप अभी हमारे बारे में भाईसा से बात करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? जैसे ही समर्थ ने अर्पिता के मुँह से ये बात सुनी तो उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा,
नहीं, हमें नहीं लगता कोई भी जल्दबाजी हो रही है, और वैसे भी आप नहीं जानती हमने कब से इस दिन का इंतजार किया है। अर्पिता समर्थ की आंखों में अपने लिए एक अलग ही प्यार देख पा रही थी। उसकी आंखों में प्यार से ज्यादा एक तड़प नजर आ रही थी, और वो तड़प शायद अर्पिता के लिए ही थी। अर्पिता ने जब उसे महसूस किया तो उसने समर्थ के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, हम जानते हैं समर्थ, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप भाईसा से भी बात कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज आपको भाईसा से इस बारे में कोई भी बात करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आज आपने भाईसा से ये सब कुछ कहा तो कहीं भाईसा थोड़े टेंशन में ना आ जाए। और वैसे भी अभी भाभीसा के साथ वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कल भाभीसा का पगफेरा भी है, और उसके लिए भी हमें काफी सारी तैयारी करनी है। अगर आपने अभी भाईसा से इस बारे में बात की तो वो थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे, और फिर कल पगफेरे की रस्म में हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए आपने जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा सा और सही। समर्थ उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। तभी अर्पिता ने फिर से समर्थ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते? समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब अभिमन्यु और भाभीसा के पग फेरे की रस्म कल हो रही है, ये बात आपको कब पता चली? समर्थ की ये बात सुनकर अर्पिता ने कहा, अभी मासा के पास भाभीसा की मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कल ही पग फेरे के लिए बुलाया है, और हमें भी काफी तैयारी करनी है, इसीलिए हम अभी आपको मना कर रहे हैं, और अभी इतने सारे मेहमान भी घर में हैं, अगर उनमें से किसी के भी कान में ये बात पड़ी तो लोग हमें ही बुरा भला बोलेंगे।
अर्पिता की ये बात सुनकर समर्थ ने तुरंत अर्पिता के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्यों, आपको भला कोई क्यों बुरा भला बोलेगा, और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सामने कोई आपको कुछ कह पाए? अब तो हम आप पर किसी की नज़र क्या एक उंगली भी नहीं उठने देंगे। अर्पिता समर्थ की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई, और उसने समर्थ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है, एक बार भाभीसा और भाईसा के पगफेरे की रस्म हो जाए उसके बाद आप भाईसा से बात कर लीजिएगा, ओके? समर्थ ने अर्पिता की ये बात सुनी और उसने अर्पिता के माथे को चूमते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। अर्पिता समर्थ को देखकर खुश हो गई, और जिस तरह से उसने अभी उसके माथे को चूमा था उसे देखकर अर्पिता की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थीं। तभी अर्पिता को किचन में किसी के आने की आहट सुनाई दी, और उसने तुरंत समर्थ को खुद से दूर करते हुए कहा, कोई आ रहा है। समर्थ ने भी किचन के दरवाजे की तरफ देखा, और उसे वहां पर किसी के आने की परछाई नजर आने लगी। समर्थ तुरंत फ्रिज की तरफ घूम गया, और उसने फ्रिज से बोतल निकाली और पानी पीने लगा। अर्पिता वहीं किचन के सिंक की तरफ अपना मुंह करके खड़ी हो गई। तभी किचन में महल का एक नौकर आया, और उसने उन दोनों को वहां पर देखा। वो सीधी किचन से सामान उठाकर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला गया।